एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर पर बात करने वाली हैं जिसने दुनिया का नक्शा, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध।
नमस्कार। और इस बहुत बड़े, बहुत उलझे हुए विषय को समझने के लिए हम एक बहुत ही सम्मानित इतिहासकार गेरहार्ड एल वाइनबर्ग की मदद ले रहे हैं, और खासकर उनकी मशहूर किताब ए वर्ल्ड एट आर्म्स, ए ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर टू।
बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, है ना? मतलब आज भी ये बहुत जरूरी है।
हाँ बिल्कुल। ये समझने के लिए कि कैसे विचारधाराएं, खासकर जो बहुत कट्टर हों, वो दुनिया को इतने भयानक संघर्ष में धकेल सकती हैं,
और कैसे देशों के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। मतलब आज की जो दुनिया है इतनी उलझी हुई, उसे समझने के लिए भी ये जानना जरूरी है।
तो चलिए शुरू करते हैं लेखक से, गेरहार्ड वाइनबर्ग। वो कोई ऐसे इतिहासकार नहीं थे जो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर किताबें लिखते हों।
हाँ, उनका तो सीधा निजी वास्ता था ना नाजी जर्मनी और द्वितीय विश्व युद्ध से।
बिल्कुल। उनका जन्म 1928 में जर्मनी में हुआ, एक यहूदी परिवार में।
तो उन्होंने नाजीवाद का वो खौफनाक दौर अपनी आंखों से देखा होगा।
हाँ, और सोचिए, सिर्फ 10 साल के थे जब उन्हें परिवार के साथ भागना पड़ा, पहले ब्रिटेन गए फिर अमेरिका।
ये अनुभव, ये उनके काम को यकीनन एक अलग ही गहराई देता होगा।
निश्चित रूप से। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं रह जाता, फिर वो कोशिश करते हैं कि उनके पीछे की सोच, जो इरादे थे, उनको पकड़ सकें। शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, फिर सालों पढ़ाया।
और उनकी एक खास बात थी कि वो कई भाषाएं जानते थे।
जी।
जर्मन, अंग्रेजी, रूसी।
हाँ, और इससे फर्क ये पड़ा कि वो सीधे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो मूल दस्तावेज थे, उन तक पहुंच पाते थे, खासकर युद्ध के बाद जब्त किए गए जर्मन रिकॉर्ड्स।
अच्छा।
ये चीज उनके विश्लेषण को, उनके एनालिसिस को बहुत मजबूत बनाती है।
और एक और बात, वो युद्ध को सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं मानते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये सही मायने में पहला विश्व युद्ध था, पूरी दुनिया शामिल थी इसमें।
और इस विश्व युद्ध के केंद्र में वो किसे रखते हैं?
एडॉल्फ हिटलर। और सिर्फ हिटलर नहीं, हिटलर की विचारधारा।
और यही उनकी किताब ए वर्ल्ड एट आर्म्स का सबसे अहम तर्क है।
हाँ, अहम भी और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। वाइनबर्ग साफ साफ कहते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कोई हादसा नहीं था, कोई कूटनीतिक चूक या डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं था,
या पहले विश्व युद्ध का अगला कदम भी नहीं, जैसे अक्सर कहा जाता है।
हाँ, वो ये भी नहीं मानते, वो कहते हैं ये सब नहीं था।
तो फिर क्या था? इतना बड़ा विनाश, इतनी तबाही क्यों हुई?
वाइनबर्ग के मुताबिक ये पूरी तरह से एडॉल्फ हिटलर के दिमाग की उपज थी, एक सोची समझी, पहले से तय की हुई वैचारिक योजना का नतीजा।
एक व्यक्ति की योजना, पूरी दुनिया का युद्ध।
जर्मनों के लिए लेबेंसराम, मतलब रहने की जगह बनाना।
और दूसरा?
दूसरा, नस्ल के आधार पर दुनिया का एक नया, बहुत ही क्रूर ढांचा खड़ा करना, एक रेशियल हायरार्की।
तो मतलब जो कारण हम अक्सर सुनते हैं, जैसे वर्साय संधि का अन्याय या वो 1930 की आर्थिक मंदी।
हाँ, वाइनबर्ग उन्हें मानते हैं, पर सिर्फ सहायक कारण, सेकेंडरी। असली इंजन, असली वजह, वो हिटलर की अपनी सोच को बताते हैं।
और ये सोच कोई नई नहीं थी, मतलब सत्ता में आने के बाद नहीं बनी।
नहीं, यही तो खास बात है, ये सोच उसने सत्ता में आने से कई साल पहले ही अपनी किताब मीन कैम्फ, मेरा संघर्ष, में साफ साफ लिख दी थी।
अच्छा।
इसीलिए वाइनबर्ग की किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, वो इस पर ज्यादा जोर देती है कि क्यों हुआ और कैसे एक आदमी की सोच ने पूरी दुनिया को लपेट लिया।
चलिए इसी क्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपने कहा वाइनबर्ग बार बार हिटलर की विचारधारा पर लौटते हैं, क्या थी ये विचारधारा जिसने इतनी आग लगाई?
हाँ, उनके विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में यही है। देखिए, हिटलर की सोच सिर्फ राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म नहीं थी, ये एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण था।
किस चीज का?
एक तो वो लेबेंसराम वाली बात, पूरब में फैलाओ। दूसरा, नस्लीय शुद्धता का जुनून, मतलब आर्यंस सबसे ऊपर और यहूदी और दूसरी कई नस्लें या तो कमतर हैं या उन्हें खत्म ही कर देना है।
ये तो सिर्फ जर्मनी के लिए कुछ हासिल करना नहीं हुआ।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दुनिया को बदलने का एक हिंसक, एक क्रांतिकारी प्रोग्राम था, पूरी दुनिया पर अपना एक नस्लीय नजरिया थोपने की कोशिश थी।
और शायद इसीलिए वो तुष्टीकरण, वो अपीजमेंट की पॉलिसी जो थी ब्रिटेन और फ्रांस की, वो इतनी बुरी तरह नाकाम रही। वो सोचते रहे कि हिटलर को कुछ देकर शांत किया जा सकता है।
हाँ, क्योंकि वो हिटलर को एक पारंपरिक नेता समझ रहे थे, उन्हें लगा इसके कुछ सीमित लक्ष्य होंगे, कुछ मांगे होंगी, पूरी कर दो, मामला शांत हो जाएगा।
लेकिन वो उसकी विचारधारा की गहराई
और उसके इरादों की भयानकता को समझ ही नहीं पाए। वाइनबर्ग यही दिखाते हैं कि हिटलर समझौता करने वालों में से था ही नहीं, उसकी भूख असीमित थी, उसे जमीन का कोई टुकड़ा नहीं चाहिए था, उसे पूरी दुनिया अपनी शर्तों पर चाहिए थी।
और एक्सिस में जो हिटलर के साथी थे, इटली और जापान, उनके लक्ष्य कैसे थे? क्या वो भी इसी तरह सोच रहे थे?
उनके भी अपने विस्तारवादी सपने थे, इसमें कोई शक नहीं। मुसोलिनी का वो रोमन साम्राज्य वाला सपना, जापान का एशिया में अपना दबदबा बनाने का इरादा।
लेकिन
वाइनबर्ग साफ करते हैं कि ये हिटलर की वैश्विक योजना जितने बड़े या उतने सोचे समझे, उतने व्यवस्थित नहीं थे,
और शायद तालमेल की भी कमी थी।
हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी, इन तीनों जर्मनी, इटली, जापान में कोई गहरा रणनीतिक तालमेल, कोई कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। वो एक साथ लड़ जरूर रहे थे, पर ज्यादातर अपने अपने मकसदों के लिए।
तो ये जो अलग अलग लड़ाइयां चल रही थीं, ये एक वैश्विक महायुद्ध, एक ग्लोबल वॉर में कैसे बदल गई? शुरुआत तो सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मन हमले से हुई थी।
हाँ, फिर कुछ महीने थोड़ी शांति रही, जिसे फोनी वॉर भी कहते हैं। फिर 1940 में जर्मनी ने बिजली की तेजी से डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और सबसे अहम फ्रांस को हरा दिया।
फ्रांस का इतनी जल्दी हार जाना तो एक बहुत बड़ा शॉक रहा होगा दुनिया के लिए।
बहुत बड़ा। ब्रिटेन बिल्कुल अकेला पाया गया।
फिर हुई ब्रिटेन की लड़ाई, बैटल ऑफ ब्रिटेन,
जहां हिटलर को पहली बार रुकना पड़ा।
बिल्कुल, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। ये हिटलर की पहली बड़ी रणनीतिक हार थी। पश्चिम में जब वो रुक गया तो फिर वो अपने असली वैचारिक मकसद की तरफ मुड़ा,
पूरब की ओर। हाँ, पूरब की ओर। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, ऑपरेशन बारबरोसा। यही उसका वो लेमेंसराम और नस्लीय सफाई का मुख्य युद्ध क्षेत्र बनना था।
और उसी दौरान प्रशांत महासागर में क्या चल रहा था? जापान भी तो चीन में उलझा हुआ था।
हाँ, और जब उसने देखा कि यूरोप में जो बड़ी ताकतें थीं, फ्रांस, डच, ब्रिटेन, वो कमजोर पड़ रही हैं, तो जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में फैलना शुरू किया, तेल और दूसरे संसाधनों के लिए।
और इससे उसका टकराव अमेरिका से हुआ।
हाँ, क्योंकि अमेरिका ने जापान पर तेल की सप्लाई रोक दी, और नतीजा 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर जापानी हमला।
इसी एक दिन ने सब कुछ बदल दिया।
हाँ, इसी एक घटना ने यूरोप और एशिया की जो अलग अलग लड़ाइयां चल रही थीं, उन्हें एक वैश्विक संघर्ष में जोड़ दिया।
और यहीं पर वो ग्रैंड अलायंस बना, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ का। तीन बहुत ही अलग तरह के देश एक साथ आ गए।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, एक पूंजीवादी लोकतंत्र अमेरिका, एक साम्राज्यवादी देश ब्रिटेन और एक कम्युनिस्ट तानाशाही सोवियत संघ, ये तीनों नाजी जर्मनी और जापान के खिलाफ एक साथ आए।
और उन्होंने मिलकर एक बहुत जरूरी फैसला लिया, जर्मनी फर्स्ट।
हाँ, कि पहले यूरोप में हिटलर को हराना है, ये उनकी मुख्य रणनीति थी।
लेकिन 1942 तक तो ऐसा लग रहा था जैसे एक्सिस शक्तियां ही जीत रही हैं। जर्मनी रूस में बहुत अंदर तक घुस गया था, जापान ने लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत पर कब्जा कर लिया था।
हाँ, वो उनका चरम था, उनकी हाई वाटर मार्क कह सकते हैं। लेकिन वाइनबर्ग कहते हैं कि इसी फैलाव में, इसी विस्तार में उनकी हार के बीच छिपे थे।
कैसे?
एक तो वो जीते हुए इलाकों को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे, उनकी सप्लाई लाइनें बहुत ज्यादा खिंच गई थी, और उन्होंने अपने दुश्मनों की ताकत को कम आंका था, खासकर सोवियत संघ के लड़ने के जज्बे को और अमेरिका की औद्योगिक शक्ति को।
अमेरिका की औद्योगिक ताकत, जिसे लोकतंत्र का शस्त्रागार या आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी क्या भूमिका रही?
वाइनबर्ग के अनुसार भूमिका बहुत बड़ी थी, शायद निर्णायक। अमेरिका ने जिस पैमाने पर, जिस स्केल पर हथियार, जहाज, टैंक, हवाई जहाज बनाए और मित्र राष्ट्रों, मतलब एलाइज को दिए,
उसका मुकाबला एक्सिस देश कर ही नहीं सकते थे।
बिल्कुल नहीं। ये युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जा रहा था, ये फैक्ट्रियों में भी लड़ा जा रहा था, और वहां अमेरिका बहुत बहुत आगे था।
और फिर धीरे धीरे पासा पलटा, कुछ बड़ी लड़ाइयों ने रुख बदल दिया।
हाँ, 1942-43 में तीन बड़े मोड़ आए। एक तो प्रशांत में मिडवे की लड़ाई, वहां अमेरिकी नौसेना ने जापानी नौसेना की कमर तोड़ दी।
दूसरा, उत्तरी अफ्रीका में एल अलामीन।
हाँ, जहां ब्रिटिश सेना ने जर्मनों को पीछे धकेला। और तीसरा और शायद सबसे अहम, स्टालिनग्रैड,
जहां सोवियत सेना ने जर्मन 6th आर्मी को घेर कर पूरी तरह तबाह कर दिया।
हाँ, ये बहुत बड़े निर्णायक मोड़ थे। इसके बाद एक्सिस शक्तियां लगातार पीछे हटती गईं।
इसके बाद तो मित्र राष्ट्र हावी होते चले गए।
हाँ, पूरब से सोवियत सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, पश्चिम से मित्र राष्ट्रों ने पहले सिसिली और फिर इटली पर हमला किया। मुसोलिनी का अंत हुआ।
अटलांटिक में भी हालात बदले।
हाँ, अटलांटिक की लड़ाई मित्र राष्ट्रों ने जीत ली। जर्मन पनडुब्बियों का खतरा कम हो गया, जिससे अमेरिका से सप्लाई और सैनिक आसानी से यूरोप आने लगे। जर्मनी पर बमबारी बहुत तेज हो गई। और फिर आया जून 1944, D-Day,
Normandy Landing,
जिसने पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोल दिया।
बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। लगभग उसी समय पूर्वी मोर्चे पर सोवियत संघ ने एक बहुत बड़ा हमला किया, ऑपरेशन बगाथियोन। उसने जर्मन सेना की पूर्वी फ्रंट पर कमरी तोड़ दी।
तो अब जर्मनी दोनों तरफ से घिर गया था।
हाँ, दो तरफा मार झेल रहा था। उधर प्रशांत में जापान से लड़ाई और भी ज्यादा खूनी होती जा रही थी। इवो जीमा, ओकिनावा, बहुत भयंकर लड़ाइयां हुई वहां।
और अंत में
परमाणु बम।
हाँ, अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ।
लेकिन वाइनबर्ग एक और बात पर बहुत जोर देते हैं, जिसे हम शायद युद्ध की कहानी में अक्सर थोड़ा किनारे कर देते हैं।
आप होलोकॉस्ट की बात कर रहे हैं?
हाँ
हाँ, वाइनबर्ग का ये बहुत ही मजबूत तर्क है कि यहूदियों और दूसरे समूहों का जो योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार किया गया, जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं, वो युद्ध का कोई साइड इफेक्ट या नतीजा नहीं था, बल्कि वो नाजी जर्मनी का एक मुख्य युद्ध लक्ष्य था, उनकी नस्ली विचारधारा का एक जरूरी अभिन्न हिस्सा था।
और इसका सबूत?
सबूत ये कि जब जर्मनी जंग हार रहा था, आखिरी दिनों में भी, तब भी कैदियों को मौत के कैंपों तक ले जाने के लिए जरूरी रेलगाड़ियां और संसाधन लड़ाई के मोर्चे से हटाकर इस काम में लगाए जा रहे थे। ये दिखाता है कि नाजियों के लिए ये नरसंहार कितना अहम था, लड़ाई जीतने जितना ही अहम।
तो अगर हम वाइनबर्ग के विश्लेषण के जो मुख्य विषय हैं, जो की थीम्स हैं, उन्हें समेटने की कोशिश करें, तो पहला और शायद सबसे अहम है विचारधारा की ताकत।
निश्चित रूप से, ये युद्ध हमें दिखाता है कि कैसे एक कट्टर, नफरत भरी विचारधारा है पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। ये सिर्फ जमीन या संसाधनों की लड़ाई नहीं थी, ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ नाजी नस्लवाद और दूसरी तरफ तमाम कमियों के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्य।
दूसरा विषय युद्ध का वैश्विक होना। ये सही मायनों में पहला ग्लोबल वॉर था।
हाँ, ऐसा संघर्ष पहले कभी नहीं हुआ था। हर महाद्वीप, हर समुंदर इसकी चपेट में था। इसने न सिर्फ देशों को बल्कि आम लोगों की जिंदगी को दुनिया के हर कोने में प्रभावित किया। इसने दुनिया को एक तरह से हमेशा के लिए जोड़ दिया, और जो पुराने औपनिवेशिक साम्राज्य थे उनके अंत की शुरुआत भी यहीं से हुई।
तीसरा, औद्योगिक और आर्थिक शक्ति का महत्व।
हाँ, ये बहुत साफ है। अंत में जीत उसी की हुई जिसके पास ज्यादा संसाधन थे, ज्यादा उत्पादन क्षमता थी, खासकर अमेरिका। ये दिखाता है कि आज के जमाने का युद्ध सिर्फ बहादुरी या रणनीति से नहीं जीता जाता, अर्थव्यवस्था और तकनीक का रोल बहुत बड़ा होता है।
चौथा, गठबंधनों का प्रबंधन, अलायंस मैनेजमेंट।
बिल्कुल, वो जो ग्रैंड अलायंस था, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, उनके बीच कितने मतभेद थे, विचारधाराएं कितनी अलग थी, लेकिन फिर भी वो एक साझा दुश्मन के खिलाफ मिलकर काम कर पाए,
जबकि एक्सिस शक्तियां बिखरी रहीं।
हाँ, उनमें वो तालमेल कभी नहीं बन पाया। तो ये हमें सिखाता है कि साझा दुश्मन के सामने मुश्किल गठबंधन भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी कि जैसे ही साझा खतरा हटता है, वो गठबंधन टूट भी सकते हैं।
और पांचवा, जिसे भूलना नामुमकिन है, होलोकॉस्ट की केंद्रीयता।
हाँ, इसे बार बार दोहराना जरूरी है। ये सिर्फ युद्ध का एक भयानक साइड शो नहीं था, ये नाजी सोच और उनके मकसद का एक बुनियादी हिस्सा था। इसे समझे बिना हम उस दौर की भयावहता को, उसकी असली प्रकृति को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते।
वाइनबर्ग के विश्लेषण में कुछ ऐसे विचार हैं जो बहुत गहरे हैं, जो दिमाग में रह जाते हैं। क्या हम कुछ मुख्य विचारों को फिर से दोहरा सकते हैं ताकि वो श्रोताओं के जहन में बैठ जाएं?
जरूर। पहला और सबसे बुनियादी विचार तो यही है जिसे वाइनबर्ग बार बार कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर का युद्ध था। उसकी विचारधारा ही इसे शुरू करने, लड़ने और इसके लक्ष्यों को तय करने के पीछे थी। बाकी कारण जैसे अर्थशास्त्र या कूटनीति, वो सब सहायक थे, मुख्य नहीं। ये जिम्मेदारी सीधे हिटलर और उसकी सोच पर डालता है।
दूसरा विचार जो युद्ध के वैश्विक रूप पर जोर देता है, जैसे ही जर्मनी ने सोवियत संघ पर और जापान ने अमेरिका पर हमला किया, दो अलग अलग महाद्वीपों के युद्ध एक वैश्विक संघर्ष बन गए। अब रूस में जो हो रहा था उसका असर प्रशांत महासागर की रणनीति पर पड़ सकता था, और अटलांटिक में जो लड़ाई चल रही थी उसका असर पूर्वी यूरोप के लाखों लोगों के भाग्य पर पड़ सकता था। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है।
और तीसरा, जो होलोकॉस्ट के बारे में है और बहुत महत्वपूर्ण है, यहूदियों का सामूहिक नरसंहार जर्मन युद्ध नीति का कोई मामूली हिस्सा नहीं था, ये उसके केंद्रीय मकसदों में से एक था। हारते हुए भी इसके लिए संसाधन लगाना दिखाता है कि ये नाजियों के लिए लड़ाई जीतने जितना ही जरूरी था। ये नाजी शासन की असली भयानक प्रकृति को उजागर करता है।
इतिहास की ये सारी बातें, इनका आज हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या हम इनसे आज के लिए कुछ सीख सकते हैं?
हाँ बिल्कुल। पहला तो यही कि हम आज के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बेहतर समझ सकते हैं। जैसे वो ग्रैंड अलायंस बना था, वैसे ही आज भी देश साझा खतरों, मान लीजिए आतंकवाद है या जलवायु परिवर्तन है, इनके खिलाफ एकजुट होते हैं, भले ही उनके अपने हित कितने ही अलग क्यों ना हो। ये गठबंधनों की ताकत भी दिखाता है और उनकी सीमाएं भी।
और जो कट्टरपंथ है, एक्सट्रीमिज्म, उसे समझने में भी मदद मिलती है ना। वाइनबर्ग दिखाते हैं कि कैसे नफरत भरी विचारधारा अगर सत्ता पाले तो कितनी तबाही ला सकती है।
बिल्कुल, ये हमें चेतावनी देता है कि ऐसे विचारों को और ऐसे नेताओं के घोषित इरादों को गंभीरता से लेना जरूरी है। वो जो तुष्टीकरण की नीति थी, वो कितनी खतरनाक साबित हुई थी।
सही कहा।
और तीसरा, शायद लीडरशिप के बारे में, मुश्किल समय में नेतृत्व कैसा होना चाहिए। चर्चिल का वो दृढ़ संकल्प, रूजवेल्ट की वो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, हाँ, स्टालिन की भी अपनी भूमिका थी लामबंदी में। इन नेताओं के फैसलों से, उनकी ताकत और उनकी गलतियों दोनों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। संकट में साफ संवाद, लंबी रणनीति और आपसी रिश्तों का क्या महत्व होता है।
तो अंत में इस पूरी गहरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे अहम बात क्या रही?
मेरे लिए शायद ये कि इतिहास पहले से तय नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध होना ही था, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। ये इंसानी फैसलों का नतीजा था, और खासकर एक व्यक्ति की कट्टर विचारधारा का। और वाइनबर्ग जिस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, वो चीज़ आज की हमारी और भी ज्यादा जुड़ी हुई दुनिया को समझने के लिए बहुत प्रासंगिक है।
और मेरे लिए शायद ये कि युद्ध सिर्फ लड़ाइयों और हार जीत की कहानी नहीं है, ये विचारों की भी लड़ाई है, विश्व दृष्टिकोणों का टकराव है, और कैसे औद्योगिक ताकत आखिर में निर्णायक साबित हो सकती है। और हाँ, होलोकॉस्ट को युद्ध के केंद्र में रखने का वाइनबर्ग का जो आग्रह है, वो हमें लगातार याद दिलाता है कि हमें इतिहास की सबसे अंधेरी, सबसे भयानक घटनाओं को कभी भूलना या कमतर नहीं आंकना चाहिए, ताकि हम उनसे सही सबक ले सकें और वैसा दोबारा न हो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।